नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, आइए हम सब आज के वचन के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को आप खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके वचन में से पढ़ते और सीखते हैं, प्रभु यह वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हमारे उन भाई बहनों को आप आशीष दें जो बीमार हैं, दुखी हैं, चिंता और परेशानी में हैं, प्रभु आप उनकी भी सुधि लें। हम सब के साथ हो और आज के दिन विशेष रूप से हम सब से बातचीत करें, हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो पंच ग्रंथ है, और हम देख रहे हैं कि मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले इसराइल की इस नई पीढ़ी को इतिहास के पुनरावलोकन द्वारा चिता रहा है कि जो उनके पितरों ने किया उसे वे न दोहराएं। आज के अध्ययन का विषय है नई पीढ़ी को नसीहत। अध्याय 4 इसराइल के जंगल प्रवास के पुनरावलोकन का अंतिम भाग है। इसराइल यर्दन नदी के पूर्वी तट पर पर्वत नीबो के निकट है जहां मूसा उन्हें संदेश दे रहा है। मूसा के साथ पिछली पीढ़ी के दो ही पुरुष हैं जिन्होंने पूरी यात्रा की और अब यहां उपस्थित हैं, यहोशू और कालेब। अन्य सब जंगल में ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। उनकी हड्डियां रेगिस्तान में सूख रही हैं। यह नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश हेतु तैयार खड़ी है, परंतु इससे पहले कि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें, मूसा उन्हें जंगल के अनुभवों का स्मरण कराते हुए अनुरोध करता है कि वे परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है, उन्हें चाहता है। मूसा उस नई पीढ़ी से आग्रह करता है कि वे परमेश्वर की आज्ञा माने। आइए अब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अब हे इसराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन ले और उन पर चल, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। मित्रों, उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना था, सुनने वाले ही नहीं करने वाले बनना था। ध्यान दीजिए, उन्हें न तो वचन में कुछ जोड़ना था और न ही उसमें से कुछ घटाना था, उन्हें ज्यों का त्यों वचन पर चलना था। मेरे मित्रों, यदि इसराइल व्यवस्था पालन करता तो कैसा आशीषित होता, परंतु वहां हम इतिहास में एक ऐसे मनुष्य जाति को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने अनुकूल परिस्थितियों में व्यवस्था दी और वे उसे निभा ना पाए। परमेश्वर के सामने मनुष्य व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं? क्या इसलिए कि परमेश्वर निरंकुश है? जी नहीं, इसलिए कि दैहिक मनुष्य आमूल रूप से अनुचित है। यही एक समस्या भी है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि यह पुस्तक दो महान विषयों पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है, प्रेम और आज्ञा पालन। संभवतः आपको यह बोध कभी नहीं हुआ है कि प्रेम पुराने नियम का महान विषय है। इस अध्याय में मूसा इसराइल से विनय करता है कि वे परमेश्वर की आज्ञाएं माने और वह इसका कारण भी देता है। पहला कारण है, परमेश्वर इसराइल को सुरक्षित रखना और समृद्धि प्रदान करना चाहता था। पहला पद है कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना है और उसके आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना है। जिससे कि वे जीवित रहें और उस देश के अधिकारी हो जाएं। आज्ञाकारिता ही उनके लिए परमेश्वर से आशीषें पाने का आधार है। परमेश्वर की इच्छा है कि वे उसकी आज्ञा माने, क्योंकि उसकी मनोकामना उन्हें आशीष देने की थी। दूसरा कारण, इसराइल की आज्ञाकारिता से परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्ति प्रकट होती है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 5 से 8 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं? फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें ऐसी अद्भुत आशीषें दी थी कि उन्हें आज्ञा पालन द्वारा कृतज्ञता प्रकट करनी थी। अब हम देखते हैं तीसरा कारण, परमेश्वर का प्रेम उनकी आज्ञाकारिता का प्रेरक है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 37 पद में पढ़ते हैं, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। मेरे मित्रों, बाइबल में यह पहली बार है कि परमेश्वर ने कहा कि वह किसी से प्रेम करता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के आरंभ से ही मनुष्य के लिए प्रेम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब तक उसने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ पहली बार वह प्रेम का उल्लेख करता है। वह इसे अपने कार्यों का उद्देश्य कहता है। उसने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला और वह उनके लिए इससे भी बड़े और सामर्थ्य कार्य करने जा रहा था, जिनका आधार और प्रेरणा उनके लिए उसका प्रेम था। मेरे मित्रों, यह एक ऐसा सत्य है जिसे आज प्रत्येक मनुष्य को समझना है। आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको परमेश्वर के प्रेम का अनुभव सदैव नहीं होता है, क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच बाधक होते हैं। हमारे पापों के उपरांत भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। उसने मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा उस प्रेम को प्रकट किया है। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। चौथा कारण है, उन्हें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, क्योंकि वे परमेश्वर के हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भवों के बाल मुड़ाना। मेरे मित्रों, परमेश्वर की आज्ञा मानना जीवन का पहला नियम है। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं चाहता है, और सत्य तो यह है कि वह परमेश्वर का विरोधी भी है। परमेश्वर के वचन में हम हर स्थान पर यही देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। आज भी मनुष्य की यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मेरा मन बड़ा हर्षित है, क्योंकि मैंने एक कलीसिया में प्रचार किया और आराधना के पश्चात एक महिला मेरे पास आकर बोली, मैंने आपके रेडियो कार्यक्रम को सुनकर उद्धार पाया है, परंतु मैं अपने पति को कभी आराधना में ना ला पाई। मैं उसमें कभी रुचि नहीं जगा पाई। वह सदैव विरोध करते हैं, परंतु अब वह आपके कार्यक्रम सुनते हैं और उसे छोड़ अन्य कोई कार्यक्रम नहीं सुनते हैं। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर का वचन मनुष्य का विरोध तोड़ नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है जो यह कर पाएगा। यदि इसराइल परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता, तो उसे कैसी आशीष प्राप्त होती? हम देखते हैं आज्ञाकारिता और अवाज्ञा के परिणाम। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। ध्यान दीजिए कि वह बिलाम के विषय कह रहा है, जिसे इसराइल को श्राप देने के लिए बुलाया गया था, परंतु वह श्राप देने में सफल नहीं हुआ और इसके विपरीत उसके मुंह से आशीर्वाद के वचन निकले। इस कारण उसने मोआब के राजा को परामर्श दिया कि इसराइल के विनाश का एक ही मार्ग है कि उसकी प्रजा के लोग इसराइलियों में घुल मिल जाएं और विवाह करें, जिसके द्वारा वे उन्हें मूर्ति पूजा में ले आए तो परमेश्वर का दंड उन्हें परमेश्वर से मिलेगा। हमने गिनती की पुस्तक अध्याय 25 में यही देखा था। उस नई पीढ़ी के लिए यह एक सबक होना था, वरन हमारे लिए भी जो आज हम रहते हैं। आज्ञा पालन का प्रतिफल मिलता है। जो परमेश्वर के निष्ठावान थे वे जीवित रहे और अब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें फिर स्मरण कराता है कि आज्ञा पालन के द्वारा उन्हें आशीषें मिलेंगी। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, सुनो मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। ध्यान दीजिए, आज्ञा पालन परमेश्वर की आशीषों का वाहक है। वे प्रतिज्ञा के देश में जाकर उस पर अधिकार करेंगे। उनकी आज्ञाकारिता एक और उद्देश्य की पूर्ति करती है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। मेरे मित्रों, इसराइल को संसार में परमेश्वर का गवाह होना था। इसराइल की गवाही कलीसिया की गवाही के सर्वदा विपरीत थी। हमें आदेश है कि हम संपूर्ण संसार में सुसमाचार सुनाएं। यह आज्ञा विश्वासियों के लिए है। प्रत्येक विश्वासी को यह अनिवार्यता है कि वह परमेश्वर के वचन को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने के काम में कोई न कोई भूमिका निभाए। इसराइल को प्रचारक होने का आदेश नहीं दिया गया था। उन्हें अन्य जातियों को आमंत्रित करना था, आओ हम यहोवा के घर चलें। उनकी आज्ञाकारिता और ईश्वर निष्ठा अन्य जातियों को परमेश्वर के नियमों को सुनने की प्रेरणा देगी और वे देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषों से इसराइल एक महान राष्ट्र बना। तब वे क्या करेंगे? शीबा की रानी ने क्या किया था? उस समय हवाई जहाज तो था नहीं। उसने दूर देश से लंबी कठिन यात्रा की। यदि एक स्त्री ऐसी लंबी और कठिन यात्रा करके इतना दूर आ सकती थी तो पुरुष भी अवश्य आते होंगे। वे आते थे। इसराइल की संसार में यही गवाही थी। मेरे मित्रों, यदि वे आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और इस प्रकार वे सब जातियों में गवाह होंगे। यदि वे आज्ञा नहीं मानेंगे और परमेश्वर से दूर होंगे तो परमेश्वर उन्हें दंड देगा। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। परमेश्वर ने इसराइल पर शिक्षा देने की सेवा का बोझ डाला था। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी थी और अपने बच्चों और नाती पोतों को भी यही शिक्षा देनी थी। मेरे मित्रों, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा दायित्व है कि युवा वर्ग को शिक्षा देना। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी चूक शिक्षा देने में चूकना है। आज अमेरिका को देखें, वे शिक्षा के क्षेत्र में कैसी भारी भूल कर रहे हैं। मैं स्कूल और कॉलेजों को दोष नहीं दे रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि समस्या कहाँ है? परिवार में है। परमेश्वर ने इसराइल से कहा अपनी संतान और पोतों को सिखाना। शिक्षा की चूक परिवार में माता पिता की चूक है। परमेश्वर ने इसराइल में प्रत्येक माता पिता को यह उत्तरदायित्व सौंपा था और हम देखते हैं कि यदि आप संतान उत्पन्न करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व आप पर ही है। हमारी आज की समस्या न तो विदेशी मुद्दे हैं और न ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। हमारी समस्या परिवार है। परमेश्वर तलाक देने वाले और व्यस्त माता पिता को संसार के आवारा मनुष्यों का उत्तरदायित्व ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने माता पिता का निर्देशन, प्रेम, देखभाल और भावनाओं को समझना कभी नहीं जाना। मेरे मित्रों, माता पिता होना कैसा उत्तरदायित्व है। परमेश्वर इसराइल पर इस बात को स्पष्ट करता है और प्रकट कर देता है। इसराइल राष्ट्र क्यों चुका? क्योंकि परिवार चुक गए और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। यह अध्याय रुचिकर है। और अब पद 12 को देखें, 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई न रूप देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद में स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर के आराधक उसकी उपासना में किसी भी प्रकार की मूरत या मूरत के समक्ष नहीं झुकेंगे। यीशु मनुष्य रूप धारण किया था, परंतु धर्मशास्त्र में उसके रूप का विवरण नहीं देता है। यदि आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं तो आप मुझे लकीर का फकीर समझेंगे, परंतु मैं निश्चय ही यीशु के चित्रों में विश्वास नहीं करता हूं। और मैं जानता हूं कि अनेक अच्छे लोग सोचते हैं कि यीशु के चित्र आराधना में उनकी सहायता करते हैं। मैं आपको एक प्राचीन टीकाकार के विचार सुनाता हूं। कहते हैं, मनुष्य यीशु का चित्र कभी नहीं बनाएगा जब तक कि उसके मन में यीशु की उपस्थिति चली न गई हो। हमें यीशु की आवश्यकता हमारे मन में है, न कि कैनवास पर रंगों से। ये महान एवं अनंत सत्य है जो परमेश्वर इस अध्याय में हमें दे रहा है। मेरे मित्रों, उस समय इसराइल को दिए गए निर्देश आज हमारे लिए महान सिद्धांत हैं कि उनमें जीवन निर्वाह करें, क्योंकि सत्य अनंत होता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 24 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के रूप में मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उससे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे। ध्यान दीजिए, इसराइल आज भी संसार में एक गवाह है, परंतु अवज्ञा का गवाह। वे आज संपूर्ण विश्व में तितर बितर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यही किया जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। मैं जानता हूं कि कोई अवश्य कहेगा कि वे तो अपने देश में पुनः स्थापित हो गए हैं। जी हां, परंतु वे परेशानी में पड़े हुए हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा है। जब परमेश्वर अपने भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें पुनः अपने देश लौटा लाएगा, तब वे उन परेशानियों का सामना नहीं करेंगे जो आज उनके सामने है। मेरे मित्रों, इसराइल आज भी परमेश्वर के दंड का भागी है, क्योंकि उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है। वह हर एक देश दंड पाएगा जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता है। आज हमारे लिए यह एक महान शिक्षा है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। फिर से यहां पर ध्यान दीजिए कि यह भावी महाक्लेश का प्रथम उल्लेख है, अंत के दिनों में। मेरे मित्रों, पुराने नियम में महाक्लेश के लिए काम में लिया जाने वाला वाक्यांश यही है। परमेश्वर एक शर्त रखता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर उन्हें तितर बितर क्यों करेगा? क्या वह सताने हारा है या निर्दयी है? जी नहीं, परमेश्वर दयालु है। वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। इसराइल इतिहास से विलोप नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आज भी दयालु है। यही कारण है कि आप और मैं नाश नहीं हुए। यदि आपको परमेश्वर ने बचा लिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भले एवं प्रिय जन हैं। यह केवल परमेश्वर की दया के कारण है। मेरे मित्रों, वह इसराइल पर और हम पर भी दयालु है। मूसा उन्हें परमेश्वर की महान दया का प्रमाण देता है। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 33 और 34 पद में। क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? परमेश्वर ने सब आश्चर्य कर्म उनके पितरों की दृष्टि में किए थे। परमेश्वर चाहता था कि वे उन्हें कभी न भूलें, सदा स्मरण रखें। मेरे मित्रों, परमेश्वर उन पर अनुग्रहकारी था और चाहता था कि वे इस बात को सदा स्मरण रखें। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 37 पद में पढ़ते हैं, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इसलिए यह सब किया कि वह उनसे प्रेम करता था। यह परमेश्वर का उत्तर है। उनमें तो कोई भलाई नहीं थी, फिर भी परमेश्वर निश्चय ही भला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परंतु हमें प्रेम के द्वारा उद्धार नहीं देता। उद्धार उसके अनुग्रह से है। वह हमें स्वर्ग में पिछले दरवाजे से नहीं ले लेता। वह धर्मी होकर ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, हमारे पापों के लिए यथाविधि बलिदान की आवश्यकता थी। उसने प्रेम से अभिभूत मसीह को भेजा कि हमारे स्थान पर अपनी जान दे, और प्रभु यीशु ने भी हमसे प्रेम किया कि हमारे लिए अपनी जान दे दी, कि हमें क्षमादान मिले। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जगत का उद्धार किया। जी नहीं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, देखिए कि वह पक्षपात नहीं कर रहा है। वह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, अर्थात जो विश्वास नहीं करेगा वह उद्धार नहीं पाएगा। इसका यही एक उपसंहार है। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 4 अध्याय उसके 44 और 45 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर जो व्यवस्था मूसा ने इसराइलियों को दी वह यह है, ये ही वे चेतावनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इसराइलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे। मेरे प्रिय मित्र, यहां पर मूसा ने उन सारी बातों को उस नई पीढ़ी को कह सुनाया जिसे उसे सुनाना अवश्य था। वह चाहता था कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और वे जाने कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उन्हें मिस्र के देश से अर्थात गुलामी से बाहर निकाला है और उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराया है। आज हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने पिछले जीवन की उन बातों को भूल बैठे हैं कि हम कहां पर थे, कैसे थे, हमारी स्थिति क्या थी और आज परमेश्वर ने मुझे और आपको कहां पर ला खड़ा किया है। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक सबक है कि हम भी इसराइलियों के जीवन से उन बातों को सीखें, पीछे मुड़ करके देखें कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया और वहां से उस गंदे जगह से उठाकर मुझे एक अच्छे जगह पर खड़ा कर दिया ताकि हम उसके साथ संगति रख सकें। वह चाहता है कि हम उसे स्मरण रखें, अपने पिछले जीवन के उन परेशानियों को स्मरण रखें जहां पर परमेश्वर ने मुझे और आपको सहायता प्रदान किया, जिस प्रकार से उसने इसराइलियों को सहायता प्रदान किया, और आज उन्हें परमेश्वर की उन बातों को स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है, और यही बात मुझे और आपको भी कहा जा रहा है कि हम उसे स्मरण रखें कि वह भला है, वह प्रेमी है, वह अनुग्रहकारी है, वह आज भी आपको उद्धार दे सकता है यदि आप उस पर विश्वास करें। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी उद्धार को प्राप्त करें? मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं तो आज ही प्रभु यीशु के पास आइए, जिसने आपके बदले में अपनी प्राण कलवरी क्रूस पर दे दिया, ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज अवश्य ही निर्णय लेंगे और परमेश्वर के उन वचनों का पालन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जैसे